कृष्ण। महाभारत की कक्षाओं में भगवद गीता के ऊपर चर्चा चल रही है। छठे अध्याय तक हो चुका है, राइट? कि सातवां भी हो गया? हाँ, सातवां हो गया। ओके, तो आठवें अध्याय पर चर्चा है। ये जो सातवें से बारह तक के अध्याय हैं, ये प्रमुखतः भगवान का मुख्य संदेश है, भक्ति। इसीलिए जब छठे अध्याय में अर्जुन को भगवान ने अंत में बताया कि योगी कौन है, भक्ति योगी श्रेष्ठ हैं, तो उसको कहते हुए उन्होंने बताया था कि कैसे योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। भगवान कहते हैं कि भक्ति योगी बहुत श्रेष्ठ है। तो अब इन अध्यायों में सात से लेकर बारह तक वो भक्ति योगी कैसे बनना है, भक्ति कैसे करनी है, इसको समझा रहे हैं। तो भक्ति योगी के लक्षण उन्होंने क्या बताए थे? भक्ति योगी के लक्षण उन्होंने पहला बताया श्रद्धावान, उसको श्रद्धा होनी चाहिए। ये भक्ति योगी या भगवान के भक्त का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण उन्होंने बताया कि उसे शरण लेनी चाहिए, मद गतेन अंतरात्मना, तो मेरी वो शरण लेता है। तीसरा बताया कि वो सदैव मेरा स्मरण करता है, और चौथा वो सदैव मेरी सेवा करता है। तो ये चार लक्षण उन्होंने भक्ति योगी के बताए कि कौन है भक्ति योगी, या भक्त कौन है। श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण करना चाहिए उसे भगवान को, भगवान का सतत स्मरण होना चाहिए, और भगवान की सेवा करना चाहिए। ये भक्त के लक्षण है। तो कैसे वो श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, ये अब सातवें अध्याय से आगे आठवें नौवें दसवें तक में भी भगवान बताते हैं। कैसे श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं हो सकती। तो इसीलिए अब इन अध्यायों में भगवान ज्ञान को दे रहे हैं कि कैसे ज्ञान, किसका ज्ञान? कृष्ण का ज्ञान। क्योंकि जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो उस वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण स्वतः बढ़ जाता है, या उस वस्तु के प्रति हमारी घृणा बढ़ जाती है। अगर उसका उस वस्तु का सही ज्ञान है, वो अच्छी वस्तु है, तो हम आकर्षित होते हैं। अगर वही बहुत बुरा कार्य है या बुरी वस्तु है, तो हम उससे दूर रहते हैं। लेकिन ये होता है ज्ञान के आधार पर। तो चार चीजों में से पहली है श्रद्धा, उसको बढ़ाने के लिए भगवान ज्ञान देते हैं। तो इस अध्यायों में सातवें आठवें नौवें में भगवान का ज्ञान दिया, कौन है भगवान, कितने महान हैं। तो जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धा अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरी चीज बताई भगवान ने कि कैसे उनकी शरण लेनी चाहिए, तो उसका भी वर्णन इन अध्यायों में उन्होंने किया कि भगवान की शरण लेने के क्या मार्ग हैं, कैसे उनको सब जगह देखना चाहिए। इसको वो सातवें अध्याय दसवें अध्याय पूरे विस्तार से बताते हैं कि अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते। सातवें अध्याय में ही उन्होंने प्रारंभ कर दिया था पिछले अध्याय में, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य योग, कि अगर मुझे देखना है तो मुझे स्वाद में देखो, प्रकाश में देखो, लोगों की जो क्षमताएं हैं उसमें देखो, जो भी क्षमता है बुद्धि में देखो, शक्ति में देखो, जिसमें भी बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। तो जो भी चीजें आप देखो, श्रेष्ठ चीजें, पृथ्वी के गंध है उसमें मुझे देखो। तो भगवान ने अपने को देखने का मार्ग बताया, और कैसे उनकी सेवा करनी है ये उन्होंने आगे के अध्यायों में विस्तार से बताया। तो ये सात से बारह जो अध्याय हैं, विशेष करके प्रारंभ का जो श्लोक है सातवां अध्याय का, जहां भगवान कहते हैं मैया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम्मा यथा व्यास्यसि तच्छृणु। सुनने पर जोर देता कि सुनो, अब तक बहुत कुछ हुआ, वर्णन किया कर्म का, योग का, अब असली बात सुनो भगवान कहते हैं, अब भक्ति की वर्णन करूंगा। योगम, जिससे मुझसे जुड़ सकते हो, सही तरह से मुझसे जुड़ सकते हो, और कैसे मुझसे आसक्ति बढ़ सकती है, मैं ये आसक्त मन पार्थ, आसक्ति कैसे बढ़ा सकते हो, तो इसको वो वर्णन करते हैं। तो श्रद्धा क्या है? ये श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान की भक्ति हम जब कर रहे हैं तो केवल भक्ति करने से सारे जितने अन्य कार्य हैं वो शुभ हो जाएंगे या सिद्ध हो जाएंगे, ये विश्वास, ये श्रद्धा है। दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि बस भगवान की भक्ति करेंगे सब कुछ आएगा। और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए पहला कार्य हमें ज्ञान लेना है, दूसरा कार्य श्रद्धालु भक्तों का संग करना है। जितना हम श्रद्धालु भक्तों के साथ में रहेंगे, उनको देखकर ये जो श्रद्धा है, ये जैसे एक बीमारी होती है छूने से बढ़ जाती है, उसको छुआछूत की बीमारी कहते हैं, तो श्रद्धा भी एक बीमारी है, श्रद्धालु लोगों के साथ रहने से फैल जाती है। तो इसीलिए श्रद्धालुओं के साथ, जिनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, उनके साथ रहना चाहिए। अगर हमें श्रद्धा को बढ़ाना है, ज्ञान तो लेना ही चाहिए, जैसे भगवद गीता इत्यादि में भगवान बताते हैं, तो हमें ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रयास करना चाहिए कि हम श्रद्धालु भक्तों के साथ रहकर ये ज्ञान लें, तो बड़ी जल्दी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी। तीसरा कार्य हम करें कि हम भगवान की सेवा में लगे। सेवा करने से भी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है, और सुनने से, जितना हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान हमारे हृदय में है, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं वो ध्वनि हृदय में जाती है, हृदय शुद्ध होता है। और शुद्ध हृदय का अर्थ क्या है? कभी कभी कहा जाता है कि इस व्यक्ति का हृदय बहुत शुद्ध है। शुद्ध हृदय का अर्थ क्या है? शुद्ध हृदय का अर्थ ये नहीं है कि उसके मन में कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं है तो उसका हृदय शुद्ध है, नहीं, या फिर उसके हृदय में घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है तो उसका हृदय शुद्ध है, ये भी पूर्ण परिभाषा नहीं है। केवल हृदय में लोभ नहीं होना, घृणा नहीं होना, ये तो कोई शुद्ध हृदय का लक्षण नहीं है। शुद्ध हृदय का लक्षण क्या है? मैया सक्त मना पार्थ। शुद्ध हृदय उसको कहा जाता है जो भगवान से आसक्त है, जिसने अपना हृदय भगवान को दे दिया है, और भगवान की भक्ति करने से जिसका हृदय शुद्ध हुआ है वो शुद्ध हृदय वाला माना जाता है, अन्यथा शुद्ध नहीं हो सकती, शुद्धता नहीं। कैसे शुद्धता हो सकती है? जैसे एक समुद्र की बूंद, समुद्र की बूंद, ये हम कल कथा सुना रहे थे कि समुद्र की बूंद एक बार हवा में उड़कर आकाश में चली गई, आकाश में जाकर देखने लगी कि हाँ मैं समुद्र से ऊंची हो गई हूं, श्रेष्ठ हो गई हूं, अहंकार हो गया, और फिर वर्षा के जल के साथ उसको गटर के पानी में फेंक दिया गया, गटर में रही, फिर वापस भाप बनकर ऊपर गई, फिर से नीचे खेतों में, फिर भाप बनकर ऊपर, ऐसे वो बूंद ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कई बार हो चुका, अंत में एक नदी में गिरी जाकर, और फिर वो नदी गई सागर में, और ये बूंद फिर से सागर में आई, और उस समय उसने सागर से क्षमा याचना की कि मैं बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपको मैं छोड़कर, बड़ा अच्छा सोच रही थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अहंकार था, कष्ट हो गया। सागर ने कहा कि जितना कष्ट तुम्हें हुआ था अलग रहने में, उससे ज्यादा कष्ट मुझे हुआ, और इसीलिए मैंने व्यवस्था की इस नदी की कि वो तुम्हें मेरे पास ला सके। ये हर जीव का इस भौतिक जगत की यात्रा है, हम भी उस बूंद के समान हैं। उदाहरण दिया जाता है जीव और भगवान में, भगवान समुद्र के समान है, जीव उस बूंद के समान है। तो जब वो भगवान से अलग हो जाता है, आकाश में पहुंच जाता है, उसे लगता है मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया, मैं भगवान हो गया, और वो भोक्ता बनने का प्रयास करता, आनंद लेने का प्रयास करता, लेकिन होता क्या है, बारंबार नीचे गिरती है बूंद, फिर भाप बनकर ऊपर जाती, फिर गिरती है, फिर कहीं और, फिर इसी तरह ये बूंद, ये जीव 84 लाख योनियों में घूमता है, जन्म लेता है फिर मृत्यु होती, फिर जन्म लेता है फिर मृत्यु होती, जब तक वो एक ऐसी नदी में नहीं गिरता जाकर जो भगवान की ओर जा रही है, अर्थात जब तक वो भक्तों के संग में नहीं आता, जो भक्त भगवान की ओर जा रहे हैं उनके संग में नहीं आता, तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और जब भगवान को प्राप्त करता है तो जीव यही सोचता है बहुत बड़ी गलती की, आपसे अलग रहकर आपसे विमुख हो गया, कष्ट में था, और भगवान कहते हैं कि तुमसे ज्यादा कष्ट मुझे था। तो इसीलिए ये जो जीव ये बारंबार इस ब्रह्मांड में जो घूम रहा है, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उसे ज्ञान लेना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो शुद्ध हृदय वो है जो हृदय में भगवान का वास है, उसे शुद्ध हृदय कहा जाता है। प्रश्न ये आता है कि भगवान का वास तो हर हृदय में है, हर एक जीव के हृदय में भगवान रहते हैं, तो फिर ऐसा कैसे कहा गया कि शुद्ध हृदय वो है जिसके हृदय में भगवान है? क्या बाकियों के हृदय में भगवान नहीं है? भगवान है, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप में है, और परमात्मा वो केवल उपदृष्टा है, देख रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, वो देख रहे हैं जीव क्या कर रहा है, उसको अनुमति दे देते हैं कार्य करने की। और वैसे भी परमात्मा ये तो केवल इस भौतिक जगत के लिए भगवान का एक रूप है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण आनंद से परिपूर्ण भगवान हृदय में जब वास करते हैं तब उसको शुद्ध हृदय कहा जाता है। इसलिए शुद्ध हृदय वो है जहां भगवान से आसक्ति हो, मई आसक्त मनः पार्थ। तो ऐसी श्रद्धा हमें उत्पन्न करनी चाहिए, और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भगवद गीता के सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण है। इन अध्यायों को 7 से लेकर 12 तक के अध्यायों को अपने जीवन में कैसे उतारना है ये दिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। अभी हम लोग रविवार को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव गौर पूर्णिमा मनाने वाले हैं, तो उसको उस भगवद गीता के विशेष करके इन अध्यायों के सिद्धांत को सिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षाएं दी, और उनकी अगर सारी शिक्षाओं को सार के रूप में लिया जाए तो भगवद गीता बन जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने वही किया, और उन्होंने समझाया कि कैसे हमें इस भौतिक जगत से, इस भौतिक दुखों से छूटना है। तो चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं का सार क्या था? पहली चीज, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवद गीता के कई अध्यायों में इस बात को स्थापित किया गया। पहला ही जब पहली बार श्री भगवान उवाच कहा गया 2 अध्याय में, तो वहीं पर प्रभुपाद ने इतना बड़ा तात्पर्य दिया कि ये समझाने के लिए कि क्यों श्री भगवान कहा गया, वो भगवान है। और फिर आगे हम लोग देखते 11वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, सब में, जहां अर्जुन स्वयं इसको स्वीकार करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, तो सब जगह इन अध्यायों में श्री कृष्ण की भक्ति, जैसे 9वें अध्याय में विशेष करके भगवान ने बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए जिसमें स्पष्ट हुआ कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस तरह ये पहली चीज सिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने ये शिक्षा दी कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर कोई व्यक्ति केवल कृष्ण को भगवान मानकर केवल उनकी भक्ति करता है उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य मतलब कोई अन्य उसके लिए स्वामी नहीं है, एक ही स्वामी है श्री कृष्ण। तो ऐसे भक्त को अनन्य भक्त, या ऐसी भक्ति को अनन्य भक्ति कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ये अनन्य भक्ति देने आए थे। अभी गौर पूर्णिमा के दिवस पर और आगे अगले दिवस पर उनके विषय में सुनेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये अनन्य भक्ति देने आए जो कभी किसी ने नहीं दी थी। अनार्पित, अनर्पित मतलब किसी ने अर्पित नहीं किया था, ऐसा ऐसा प्रेम वो देने के लिए आए। और उसका सार क्या था? श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसको स्वीकार करना। तो जैसे सातवें अध्याय में, आठवें अध्याय में, दसवें अध्याय में, नवें अध्याय में तो पूरा कैसे भक्ति करनी है भगवान ने स्पष्ट दे दिए, मार्ग दे दिए। अंत में ये भी कह दिया, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा कि ये सब करना। तो भगवान की भक्ति ये श्रेष्ठ है। दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु सिखलाते हैं कि भगवान के धाम और भगवान में अंतर नहीं है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम। भगवान का जो धाम है वृंदावन, वो भगवान से अलग नहीं है, इसीलिए भक्त उसका भी आदर करते हैं। ये दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा सिखलाई कि भगवान के धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग धाम जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, धाम की आराधना करते हैं। धाम में जब जाते हैं तो धाम की प्रदक्षिणा की जाती है, जैसे भगवान की प्रदक्षिणा होती है ऐसे धाम की प्रदक्षिणा होती है। और धाम की प्रदक्षिणा होनी चाहिए उस स्थान को आदर देने के लिए, वहां रहने वाले वासियों को आदर देने के लिए, वहां के मंदिरों को, वहां के स्थानों को, स्थली को आदर देने के लिए हम लोग परिक्रमा करते हैं। साथ ही साथ कृपा की याचना के लिए परिक्रमा की जाती है, क्योंकि धाम भगवान से अभिन्न है, इसीलिए वो हमें वो शक्ति दे सकता है जिससे हम इस भौतिक कष्टों से बाहर रहें। तो इसीलिए धाम में जाकर कृपा की याचना की जाती है, और साथ ही साथ आचार्यों के आदेश का पालन होता है, शास्त्रों के आदेश का पालन होता है, इसीलिए धाम भगवान से अभिन्न है। भगवान के धाम और भगवान में अंतर नहीं माना गया। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे सिखलाते हैं गोपियों की भक्ति। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद् धाम वृंदावनम। रम्या काचिद् उपासना, किसकी उपासना? गोपियों की उपासना। तो तीसरी चीज, उन्होंने गोपियों की शुद्ध भक्ति को प्रकट किया, ये चैतन्य महाप्रभु ने किया। वैसे ऐसा नहीं है कि महाप्रभु के पहले किसी ने गोपियों की भक्ति या गोपियों के भाव को प्रकट नहीं किया था, लेकिन जिस भाव में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, जिस रूप में उन्होंने प्रकट किया, उस रूप में किसी ने गोपियों की भक्ति को प्रकट नहीं किया था। प्रमुखतः विरह भाव। तो ये जो विरह भाव ये उन्होंने प्रकट किया, जिस प्रकार का विरह भाव उन्होंने प्रकट किया पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए अनर्पिता, बहुत लंबे समय से किसी ने यह अर्पित नहीं किया था, प्रकट नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों की भक्ति को श्रेष्ठ माना और उसकी श्रेष्ठता को स्थापित किया। ये महाप्रभु के शिक्षाओं में से एक शिक्षा है जिसमें हम गोपियों को श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। चौथी बात चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में आती है श्रीमद् भागवतम, उसको उन्होंने अमल पुराण माना। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, पुराणम अमलम, तो ये अमल पुराण माना। ये एक ही श्लोक में महाप्रभु की सारी शिक्षाओं को दे दिया गया है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय सद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिद् उपासना व्रज भूवर्गे मया कल्पिता। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, तो श्रीमद् भागवत को चैतन्य महाप्रभु ने अमल प्रमाण माना है, अमल पुराण, इसमें कोई मल नहीं है। बिल्कुल एक जरा सा भी उसमें गंदगी नहीं, ऐसा पुराण उन्होंने माना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको प्रदान किया। तो इसलिए श्रीमद् भागवत को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, हृदय शुद्ध होता है इससे, क्योंकि ध्वनि प्रवेश करती है हृदय में। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको अमल पुराण करके, और फिर अंतिम चीज जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में हो, प्रेम पुमार्थो महान, उन्होंने ये समझाया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रेम की प्राप्ति, श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। तो ये एक ही श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं को दिया गया है। आराध्य भगवान ब्रजेश, भगवान जो ब्रजेश नंदन है, जो ब्रज नंदन, ब्रज के जो स्वामी हैं नंद महाराज, उनके जो नंदन के रूप, उनके बालक के रूप में आए, तो आराध्य भगवान ब्रजेश वही केवल एक आराध्य है, वही परम पुरुष है। तद धाम वृंदावनम, उनका धाम वृंदावन भी उन्हीं से, उन्हीं की तरह आराध्य है। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु, ब्रजवधुओं की भक्ति श्रेष्ठ है। वर्गे नया कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, और श्रीमद भागवत अमल प्रमाण है। और अंत में उपताते हैं प्रेमा पुमार्थो महा, कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य जीवन का है प्रेम की प्राप्ति। किस प्रेम की प्राप्ति? श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। तो ऐसे ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं जो हमें भक्त बनने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे हमने बताया कि भगवान ने क्या कहा, भक्त बनने के लिए श्रद्धा चाहिए, तो श्रद्धा को उत्पन्न करवाती हैं। समर्पण चाहिए, सेवा चाहिए, भगवान का सतत चिंतन चाहिए। कैसे चिंतन कर सकते हैं भगवान का सतत? संभव नहीं है। कितने सारी चीजें मन में आती हैं, तो भगवान का चिंतन कैसे होगा? और भगवान का चिंतन करें कैसे, किस भगवान का करें? हम लोग भक्ति उन भगवान की कर रहे हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने नहीं देखा, उनके पिताजी ने नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं। अब कहा जाता है कि उनका चिंतन करो, उनकी भक्ति करो, कैसे हो सकता है? हमने किसी व्यक्ति को देखा, हम उससे आदान प्रदान कर सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उसके स्वभाव को जानकर उससे प्रेम कर सकते हैं। यहां इस व्यक्ति को किसी ने नहीं देखा, प्राय ऐसा नहीं किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम में से किसी ने नहीं देखा, बातचीत नहीं की, कैसे उनसे प्रेम हो सकता है? कैसे उनके प्रति श्रद्धा बढ़ सकती? कैसे उनकी भक्ति कर सकते हैं? फिर तो ये भक्ति केवल एक नाम मात्र की रह जाती है। व्यक्ति को जानते ही नहीं, देखा नहीं, अब उनका नाम ले रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, कैसे प्राप्त होंगे? श्रद्धा कैसे आएगी? हाँ, अगर कृष्ण आकर आपके सामने खड़े हो जाए, देखो मैं ये हूं, ऐसा दिखता हूं, तब आप बोल ठीक है आज से आपकी भक्ति करूंगा। कृष्ण तो आते ही नहीं सामने, किसी ने देखा नहीं, बस किसी ने कह दिया करना है, सब कर रहे हैं, तो कैसे श्रद्धा बढ़ेगी? ये सब चीजों से श्रवण करके। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कृष्ण को आंखों से देखने के प्रयास नहीं करना है, कानों से देखना चाहिए। इसीलिए ये जो शास्त्र है ये बड़े महत्वपूर्ण है। कल भी हम एक घटना सुना रहे थे कि कैसे ये जो शास्त्र हम लोग जिनका पालन करते हैं, इसका कितने लोग महत्व देते हैं बाहर की दुनिया में, बाहर के जगत में। जैसे एक थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया या ग्रामोफोन बनाया, उन्होंने पहला ग्रामोफोन बनाया था, रिकॉर्ड किया पहली बार, कभी उसके पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो जब उन्होंने वो बना लिया तो उनकी इच्छा हुई कि कहीं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के आवाज को रिकॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर, उनको संपर्क किया, वो उस समय इंग्लैंड में थे, और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपकी आवाज रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उस समय आइए जब बहुत सारे विद्वानों की एक सभा होने वाली है, आप उसमें आइएगा। तो इंग्लैंड पहुंचे थॉमस एडिसन, पूरा भरा हुआ था सभागृह, और वहां पर एडिसन को इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया ये एडिसन है। तो सबने बहुत उनका गुणगान किया, क्योंकि एडिसन भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे व्यक्ति। तो उस समय जब सब हो गया तो उन्होंने वो ग्रामोफोन वो लाए और उन्होंने मैक्स मुलर को बुलाया और कहा कि आप रिकॉर्ड कीजिए। तो उन्होंने बोला, तो जो उन्होंने बोला वो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उतनी जो तकनीक थी आगे नहीं बढ़ी थी कि तुरंत सुनाया जा सके। तो वो उसको लेकर गए अपने लेबोरेटरी में, वहां पर दोपहर तक उन्होंने उसका कुछ किया और दोपहर को वो ग्रामोफोन बनाकर लेकर आए। और उस ग्रामोफोन को, वो जो रिकॉर्ड था, ग्रामोफोन नहीं, वो जो रिकॉर्ड बनाकर लाए और उन्होंने फिर सबके सामने सुनाया उसको, तो सबने बहुत तालियां बजाई। पहली बार इतिहास में किसी की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। अभी हम लोगों को बड़ा सरल लगता है ना, रिकॉर्ड होने, जरा से इंस्ट्रूमेंट लगा दबा दो रिकॉर्ड हो जाते, कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई आजकल तो लोग कहीं भी कर लेते, मोबाइल पे पता नहीं कहां कहां चलते चलते बात करते करते, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। पहली बार किसी की आवाज रिकॉर्ड होकर फिर से बजी थी, लोगों ने बहुत तालियां बजाई, बहुत बड़ी चीज हो गई। तो जब सब शांत हो गए, मैक्स मुलर ने पूछा, आप सब ने मेरी सुबह आवाज सुनी? सबने कहा, और अभी फिर से वही आवाज सुनी, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? सब लोग शांत हो गए, क्योंकि किसी ने वो ध्यान ही नहीं दिया था, इतने उत्साह में थे, इतिहास बन रहा था, हिस्ट्री क्रिएट हो रही थी, तो सब इतने उत्साह में थे कि वो भूल, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या बोल रहे मैक्स मुलर। वो जो भी बोले, बस आवाज आ रही है, अच्छा वहां पर रिकॉर्ड हो गई, अच्छा। उन्होंने पूछा आपको पता है? तो सब चुप। वहां पर ग्रीक बोलने वाले थे, लैटिन बोलने वाले थे, यूरोप की अन्य भाषा बोलने वाले थे, अंग्रेजी बोलने वाले थे, लेकिन कोई भाषा नहीं बोली मैक्स मुलर ने। तब मैक्स मुलर ने उनको समझाया कि मैंने क्या बोला, और उन्होंने कहा मैंने जो भाषा बोली वो संस्कृत है, उन्होंने संस्कृत कही, और जो मैंने कहा ये ऋग्वेद का पहला श्लोक है जिसका प्रारंभ अग्नि से होता है। तो उन्होंने कहा ये ऋग्वेद का पहला श्लोक है, अग्नि मिलित ऐसे श्लोक है उसका। और उस समय सब हैरान हो गए। तब मैक्स मुलर ने बताया कि क्यों उन्होंने संस्कृत कही और क्यों उन्होंने ऋग्वेद का श्लोक कहा। उन्होंने कहा कि जिस समय सारी दुनिया में लोग गुफाओं में रहा करते थे, पहनने के लिए ठीक से उनके पास कुछ नहीं था, शिकार करके खाया करते थे, मतलब पूर्व काल के मानव की बात कर रहे हैं, उस समय भारत की संस्कृति बहुत आगे थी। ये उस समय भारत ने वेद को दिया, शास्त्रों को दिया, मैक्स मुलर कहते हैं। तो हम लोग तो सब ऐसे रहा करते थे, लेकिन भारत बहुत आगे बढ़ा हुआ था, बहुत उन्नति कर चुका था, और उस समय उन्होंने हमें वेद और शास्त्र दिए। और फिर उसके बाद फिर से वो रिकॉर्ड चलाया गया जिसमें ऋग्वेद का पहला श्लोक मैक्स मुलर ने बोला था, और जैसे ही वो चलाया गया, भारत की संस्कृति को मान देने के लिए जितने विद्वान वहां खड़े थे वो सब खड़े हो गए, जितने विद्वान वहां थे वो सब खड़े हो गए आदर देने के लिए कि भारत की संस्कृति है इतना बड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग उसके महत्व को इतना नहीं समझते हैं। देखिए कितना महत्व होगा, मैक्स मुलर ने कितना सोचा होगा कि मैं ये इतिहास बनाने जा रहा हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए, कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, कौन से शब्द बोलने चाहिए। तो वो उस समय विद्वान थे बहुत सारे, उनके अपने जो वहां के ग्रंथ हैं उनको पढ़ चुके थे, उनका अनुवाद कर चुके थे, बहुत कुछ कर चुके थे, लेकिन उस सब में उन्होंने ऋग्वेद को चुना, भारतीय संस्कृति को चुना, संस्कृत भाषा को चुना बोलने के लिए। इतिहास बन रहा है तो ऐसी चीज होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग उन चीजों को भूल चुके हैं। तो खैर ये जो शास्त्र हैं हमारे, इसीलिए जो भगवद गीता के अध्यायों में भगवान बताते हैं कि कैसे श्रवण के द्वारा केवल अपने आप को शुद्ध किया जा सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति शुद्ध होता है तो फिर गुणों के परे जाता है। इस भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये प्रकृति, जिसमें हम सब हैं और कैसे इस प्रकृति में हम जड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और उससे कैसे छूटना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भगवद गीता का है। भगवान ने कई स्थानों पर इसका वर्णन किया, प्रकृति स्थान कर्षति, संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति में, इससे बाहर आना चाहिए। तो सातवें अध्याय से उन्होंने प्रारंभ कर दिया भक्ति का वर्णन, उसमें यह भी बताया किस प्रकार के लोग भक्ति करते हैं, किस प्रकार के नहीं करते हैं इत्यादि। और विशेषता ये जो भक्ति योग है, जैसे हमने बताया कि छठे अध्याय में भक्ति योगी का वर्णन कर रहे थे, तो भक्ति योग क्या है, श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें, समर्पण कैसे करें, इसलिए जान लीजिए कि जब हम भगवान के इन इन चीजों को सुनते हैं भक्ति की दृष्टि से, भगवद गीता भागवत को, तो हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़नी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, क्योंकि श्रद्धा पर ही सब कुछ आधारित है, इसलिए श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। भगवान की भक्ति में श्रद्धा ये पहला स्तर है। जब हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति के ऊंचे स्तरों पर जाते हैं, प्रारंभ श्रद्धा से करते हैं, आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, भक्तों के संग में रहकर, बड़ी आसानी से आ सकती है श्रद्धा, इसलिए पहले श्रद्धा होनी चाहिए, तब साधु संघ में रुचि आएगी, तब हम लोग अन्य कार्य भजन क्रिया इत्यादि करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। भजन क्रिया मतलब भगवान की भक्ति करना, तो उसमें हमें रुचि आएगी, तो इसलिए उद्देश्य ये है। अन्यथा हम लोग केवल अपने जीवन में इतने फंसे रहेंगे, जीवन की घटनाओं में इतने फंसे रहेंगे कि उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक कुछ प्रभाव छोड़ देती है, हम उससे बाहर नहीं आ पाते और हम प्रश्न करने लगते हैं भगवान से। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि जब स्थितियां हमारे सामने आए तो हमें तुरंत उसको कैसे संभालना है। कोई भी अवस्था में हमारे साथ कुछ भी हो, अगर हमें स्थिति को संभालना कैसे है ये आ जाए, तब हम आराम से जीवन जी सकते हैं। और भगवद गीता का ज्ञान हमें ये सिखलाता है कि हर स्थिति में कैसे हमें सामना करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रोध बहुत आता है, भगवद गीता में उसका उपाय दिया है, दूसरा अध्याय खोलिए आपको उपाय मिलेगा कैसे अपने क्रोध को वश में करना, काम वासनाओं को वश में करना है, भगवद गीता समझा देती है कैसे इसको वश में कर सकते हैं। आपको अकेलापन लगता है, कई कई लोगों को अकेलेपन के लिए तकलीफ है, कई लोगों को साथ में रहने में तकलीफ है, लेकिन लोगों को अकेलेपन की तकलीफ, भगवद गीता में इसका उपाय है। भगवद गीता इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, साधारण ग्रंथ नहीं है कि जिसमें हम केवल भगवान की भक्ति को देखें और ये जीवन के लिए कुछ नहीं। तो इसलिए ऐसे भगवद गीता में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग किसी न किसी प्रकार से इस ज्ञान को ले सकें, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। भक्ति के ज्ञान को दुर्लभ माना गया है, दुर्लभ मतलब भगवान बता दे कई जन्मों के बाद मिलता, बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मान प्रपद्यते, तो बहुत जन्म निकल जाते हैं तब हम लोग भगवान की भक्ति में आ पाते हैं। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि आज जब हम भक्ति में आ गए हैं तो हम किस तरह इस भक्ति के मार्ग को बड़ी गंभीरता से पालन करें, हृदय में गंभीरता कैसे आए। शास्त्र सुनना, भागवत सुनना, भगवद गीता सुनना, मंदिर आना अनिवार्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में उसको उतारना। प्रभुपाद ने एक व्यक्ति से कहा कि अगर एक श्लोक भी भगवद गीता का जी लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में, भगवान की भक्ति में इन चीजों को जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण। कैसे हम गंभीर बने, हम सब भक्ति करना चाहते हैं, हम सब कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कहां वो गंभीरता है, इधर उधर हमारी दैनिक क्रिया में सारा समय चला जाता है, थोड़ा बहुत समय मिलता है भगवान की भक्ति कर लेने के लिए। इसलिए प्रयास हमारा होना चाहिए कितनी जल्दी, क्योंकि जीवन कितना है हमें नहीं पता, समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो बहुत जल्दी उस गंभीरता को प्राप्त करें। और गंभीरता को प्राप्त करने का मार्ग यहां पर दिया गया है अध्याय, किस तरह हमें भगवान से आसक्त होना है, किस तरह हमें भगवान की भक्ति की श्रेष्ठता को जानना है। हम लोग महाभारत की चर्चा कर रहे हैं, महाभारत से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोग सीखते हैं। दुर्योधन जब सारे पाप कर रहा था या गलत कार्य कर रहा था, धर्म कर रहा था, तो उसको एक आश्रय देने वाला व्यक्ति था शकुनी, या फिर कहना चाहिए उसके पिता धृतराष्ट्र। तो दुर्योधन का आश्रय गलत था, अन्यथा दुर्योधन कभी ये कार्य नहीं करता। आपने कभी मन में विचार किया कि ऐसा कैसे हो गया दुर्योधन इतना बुरा हो गया? बुरा मतलब इतना वो अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया कि नहीं बस मैं ही जो कहूंगा वो सही, कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि उसका आश्रय गलत था। उसने ऐसे लोगों का आश्रय या ऐसे लोगों को समर्पण किया हुआ था जो लोग गलत मार्ग पर थे, अधर्मी थे। दूसरी ओर अर्जुन, उसके लिए तो बहुत कष्ट थे। दुर्योधन के जीवन में बाहरी दृष्टि से कोई कष्ट नहीं था, वो कभी वन में नहीं गया, उसकी पत्नी को कभी निर्वस्त्र करने का प्रयास नहीं किया गया, उसको कभी वन में रहकर एक साल तक छुपकर नहीं रहना पड़ा, उसको किसी ने जलाने का प्रयास नहीं किया। देखिए ये सब बातें है ना, दुर्योधन को किसी ने नहीं किया ऐसा, तो उसके पास बाहरी दृष्टि से सब कुछ था, वो सुखी था, महल में रहा, खजाना उसके पास था, कभी वन में नहीं रहा, लेकिन केवल उसने आश्रय गलत लिया, इसीलिए उसको कभी संतुष्टि या सुख नहीं मिला, उन चीजों के बीच में रहकर भी कभी सुखी नहीं था। दूसरी ओर अर्जुन का आश्रय थे श्री कृष्ण, अर्जुन को सारे कष्ट हुए, जंगल में जाना पड़ा, पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, जहर दिया गया, जलाने का प्रयास किया गया, बहुत कुछ छुप कर रहना पड़ा, लेकिन उसके आश्रय थे श्री कृष्ण। सही आश्रय लेने के कारण अर्जुन को भले इतने सारे बाहरी चीजों में कष्ट हुए, लेकिन आनंद और संतुष्टि उसको प्राप्त हुई। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जीवन में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण नहीं है, हम उन चीजों के द्वारा संतुष्टि कितनी लाते हैं अपने हृदय में, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन इस तरह से बनाएं, इस तरह से ढालें कि हम स्वतः कृष्ण की ओर चले जाएं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ कीड़े मकोड़े कहीं जा रहे हैं, उनके लिए एक मार्ग, जैसे चींटियां होती हैं, चींटियों के लिए एक मार्ग बना दिया जाता है, वो उसी पर चलती है, सारे चलते चलते अपना पहुंच जाते हैं। तो हमें भी अपना जीवन ऐसे मोड़ लेना चाहिए, ऐसे बना लेना चाहिए कि अंत में वो श्री कृष्ण की ओर पहुंच जाए, कहीं और जा नहीं पाए, इधर उधर नहीं जा पाए। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस भगवद गीता को, जिसे चैतन्य महाप्रभु सिखलाने के लिए आए कि कैसे जीना है, उनके जीवन से हमें से सीखें। महाप्रभु ने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को जिया, इन शिक्षाओं का प्रचार किया प्रमुखतः भगवान के नाम के द्वारा, और इन्हीं शिक्षाओं को फिर अपने शिष्यों के द्वारा आगे आने वाले लोगों के लिए ग्रंथबद्ध किया। वही शिक्षाएं हैं ये दिखाने के लिए कि जब कहा जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो कैसे करना है, मन मना भव मत भक्तो, कैसे करना है, नहीं तो हम लोग केवल सुनेंगे, लेकिन महाप्रभु ने आके करके दिखाया कि ये भक्त होता है। तो इसीलिए गौर पूर्णिमा हमारे लिए जन्माष्टमी के समान है, श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण है उनकी इन शिक्षाओं को हम ग्रहण करें। कैसे महाप्रभु ने अपने जीवन में तपस्या दिखलाई, कैसे तपस्या करनी, उनकी जैसी तपस्या शायद ही कोई कर पाए, इतने कड़क वो सन्यासी थे, उन्होंने तपस्या को दिखलाया कैसे होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्तव्य पालन उन्होंने सिखलाए महाप्रभु ने, कैसे कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब भी एक समय ऐसा था कि महाप्रभु अचानक 20 सन्यासियों को घर पर ले आए, सबको भोजन के लिए, पत्नी को कहा बनाओ, वो बेचारी 20 लोग अचानक आ जाए तो कहां से बनाए, लेकिन बनाना पड़ा। महाप्रभु नियम है, गृहस्थ का नियम पालन कर रहे थे। तो जब गृहस्थ जीवन में रहे उन्होंने सिखलाया कि कैसे गृहस्थ होना चाहिए, सन्यासी जीवन में उन्होंने बहुत कड़क वैराग्य का प्रदर्शन किया, कैसे कठोर वैराग्य होना चाहिए। तो सब तरह का जीवन उन्होंने दिखलाया कि कैसे हमें, और सब तरह के जीवन में कैसे भगवान से आकर्षित होना चाहिए, आसक्त होना चाहिए। तो इसको उन्होंने बताया, और यही हमारे लिए जीवन में उद्देश्य है। योगम युञ्जन, योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना। जब तक हम लोग भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक हमारे जीवन में अधूरापन बना रहता है। प्रभुपाद समझाते थे कि जैसे पूर्ण को अंश और पूर्ण, जब तक अंश पूर्ण से नहीं जुड़ता उसकी पूर्णता नहीं है। किसी मशीन में कभी कभी एक नट लगा होता है, नट बोल्ट, अगर उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है तो मशीन चलती रहती है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता नट बोल्ट। उसका लाभ वही है कि वो अपने स्थान में जाकर लगे और फिर पूरी स्थिति ठीक रहे। इसी तरह हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अपने स्थान पर रहते हुए भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल करें, और उसमें महत्वपूर्ण है सुनना और ज्ञान लेना। इसीलिए भगवान कहते हैं सुनो, अब सुनो। तो ज्ञान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कथाएं महत्वपूर्ण हैं, आनंद महाभारत रामायण में आता है, ये भगवत गीता में, और वो भी जब भगवत गीता का वो अंश आता है जहां भगवान बड़ी विचित्र विचित्र बातें करते हैं, हमारे लिए बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, ये भौतिक जगत की तीन गुणों की बातें करते हैं, फिर बातें करते कैसे जीव फंसता है, अलग अलग गुण का वर्णन करते हैं, तो लगता है ये सब हमारे लिए नहीं। हमें तो सुनाइए कि अर्जुन ने क्या किया और दुर्योधन ने क्या किया। जरूरी है, जैसे हमारे लिए दवाई जरूरी है तो इस रोग से बाहर आने के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम इन ग्रंथों को बड़े ध्यान से पढ़ें और समझें। प्रभुपाद ने इतना कष्ट लिया इन ग्रंथों को लिखने के लिए, केवल यही कारण था कि हम तत्वतः कृष्ण को जान सकें। मुझे जो तत्वतः जान लेता है, भगवान कहते हैं, तो तत्वतः जानने के लिए इन ग्रंथों को दिया है। प्रभुपाद ने बड़ी मेहनत से इन ग्रंथों को लिखा है, रात रात को जाग कर लिखा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ें, ज्ञान लें और ज्ञान के द्वारा हृदय को शुद्ध करें। तो हमें जीवन में केवल इतना ही पालन करना चाहिए, और भगवान की भक्ति अब इन अध्यायों में 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां पूर्ण भक्ति है। तो अगली बार इन अध्यायों को सार के, पूरे अध्यायों को अब 12वें अध्याय तक सार के रूप में प्रकट करेंगे, और फिर आगे के जो अध्याय हैं 13वां 14वां उसको भी थोड़ा कहकर महाभारत की कथा आगे प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अब युद्ध होने वाला है। वैसे ऐसा माना जाता है कि महाभारत का अंतिम हिस्सा अब युद्ध है, स्वाभाविक है, सब कहते हैं अंतिम हिस्सा, लेकिन अगर आप महाभारत देखें तो महाभारत का युद्ध के पहले का जो हिस्सा है वो बहुत थोड़ा है, सारा हिस्सा युद्ध का है, बहुत विस्तार से युद्ध का वर्णन है, किसने कितने तीर चलाए, कितने हाथ काटे, कितने सर काटे, ये सारा वर्णन है बड़े विस्तार से। उतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, और करने जाएंगे तो बड़ा आप लोग दुखी हो जाओगे, लेकिन हम वर्णन करेंगे 18 दिनों का, एक एक दिन में विशेष जो बातें हुई, जैसे पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, ऐसे बहुत सुंदर वर्णन है। युद्ध के थोड़ा समय पहले भीष्म ने पहली बार अभिमन्यु को देखा था। अभिमन्यु को कहां से देखेंगे भीष्म, ये लोग तो वनवास में और इत्यादि इत्यादि, तो भीष्म ने देखा नहीं था, इतना बड़ा हो गया, 16 साल का हो गया, पहली बार भीष्म ने देखा था, और वो भी दूर से, नदी के उस तरफ थे। दरअसल कुरुक्षेत्र के मैदान में नदी थी और नदी के इस तरफ कौरवों की सेना थी, उस तरफ पांडवों की सेना थी। तो भीष्म एक दिन स्नान करने गए तो देखा नवयुवक दिखाई दिया, कौन है इस खेमे में? तब उन्हें लगा ये अभिमन्यु होगा। तो पहली बार अभिमन्यु को देखा था। और फिर पहले दिन क्या क्या युद्ध के नियम हुए, कैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, और फिर आगे के 18 दिनों में एक एक दिन का प्रमुख वर्णन करेंगे कि किस दिन कौन कौन मरा। मरेंगे ही सब, तो उस युद्ध में तो मरना है बहुत से लोगों को, तो इसका वर्णन होगा। लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण वर्णन है क्योंकि इनके बीच बीच में संवाद है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अर्जुन को दुर्गा देवी की पूजा करने के लिए कहा, तो प्रश्न आता है कृष्ण सामने है और वो दुर्गा की पूजा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो उसमें संवाद है अर्जुन और कृष्ण का, बहुत सुंदर, क्या बात है। तो वो वहां पर हम जब आएंगे तब वर्णन करेंगे। एक स्थान पर जब भीष्म की मृत्यु होने वाली है उसके पहले बहुत सुंदर संवाद है अर्जुन और कृष्ण का। कर्ण के साथ बहुत अच्छा संवाद है क्योंकि कर्ण ने आरोप लगाया अर्जुन पे कि तुम अधर्म कर रहे हो, मुझे ऐसे मार रहे हो। कर्ण और शाल्य का बहुत अच्छा संवाद है। तो जो 18 दिन है ना, इनमें मरेंगे तो सही लोग, लेकिन ये जो संवाद सुनने मिलेंगे उसमें बहुत बढ़िया ज्ञान है, तो उसको वर्णन करने का प्रयास आगे करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं? यस प्लीज। श्रद्धा कैसे बढ़ानी चाहिए? भगवान के प्रति अगर श्रद्धा बढ़ानी है तो हमने बताया पहली चीज ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जितना हम श्रवण करेंगे, जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे सही दृष्टि में, भगवान कौन है, कैसे प्रकट होते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका विस्तार होते हैं, फिर कैसे भौतिक जगत बनता है, तो भगवान की महानता को जब जानेंगे तो भगवान में श्रद्धा ज्ञान से बढ़ेगी। दूसरी चीज हमने बताई कि जो श्रद्धालु लोग हैं उनके साथ रहना जितना हो सके, क्योंकि ये श्रद्धा ये रहने से बढ़ जाती है, साथ में रहने से देख देख। तो श्रद्धालु भक्तों के साथ रहना चाहिए। तीसरा, जितना हो सके भगवान की सेवा करनी चाहिए, सेवा करने से भी श्रद्धा बहुत बढ़ती है। और चौथा, सुनना चाहिए, जितना हो सके भागवत को सुनेंगे तो हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, अभी कीर्तन करेंगे कुछ समय, दर्शन होंगे भगवान के और फिर आप लोग प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।